ओम शांति, ओम शांति, ओम प्रेम, ओम प्रेम, ओम आनंद, ओम आनंद, परमानंद। गुड मॉर्निंग। हर दिन बाबा हम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं लेट गो क्या करना है, छोड़ना क्या है, भूलना क्या है और याद क्या करना है और प्राप्ति का आनंद, परमानेंट प्राप्ति का की विधि क्या है। बेहद के वैराग्य या त्याग, त्याग पहले है या वैराग्य पहले है? त्याग तो परिस्थितियां त्याग करा देती हैं, दुख देने वाली चीजें। साधु संन्यासी भी वैराग से त्याग करते हैं। हम समझ से, प्राप्ति के नशे से, प्रभु मिलन की खुशी से, निश्चय से और स्वमान से, रियलाइजेशन क्या है, पुरानी आदतों को छोड़ना और बाकी स्वमान और सुखुशी की प्राप्ति क्या है। अंधेरा है, अंधेरा है, मिटाना है, बहुत काल का अंधेरा है, परंतु बहुत काल के अंधेरे को मिटाने के लिए स्विच ऑन एक सेकंड करो, अंधेरा मिट जाता है। लाइट को याद करके अंधेरे को समाप्त करते हैं। तो बाबा हमको स्वयं की स्मृति, घर की स्मृति और श्रेष्ठ प्राप्ति की स्मृति से श्रेष्ठ कर्म कराते हैं और बहुत काल का अभ्यास, पुरानी आदतें, पुरानी आदत टाइम लेती है छोड़ने में, पर जब ये समझ में आ गया कि पुरानी आदतें भी घन है, पुरानी आदत ही परेशान करने वाली है, पुरानी आदत ही कर्म को श्रेष्ठ नहीं करने देती, पुरानी आदतें ही विघ्न डालती हैं और संग, सत्संग में, श्रेष्ठ संग में रहने नहीं देती। इसलिए बाबा बार बार ये स्मृति दिलाते हैं, आदत को चेंज करो। और उसके लिए प्राप्ति को सामने रखो। आज अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे 27 तारीख की मुरली सुनते हैं, मीठे बच्चे याद से आत्मा का किचरा निकालते जाओ। आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सके। प्रश्न है, इस अंतिम जन्म में बाप के किस डायरेक्शन को पालन करने से ही बच्चों का कल्याण है। अंतिम जन्म में बाप का कौन सा डायरेक्शन पालन करने में कल्याण है? उत्तर है, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में बाप से पूरा वर्षा ले लो तो बुद्धि का बाहर भटकाओ मत, विष को छोड़ अमृत पियो। इस अंतिम जन्म में ही तुम्हें 63 जन्मों की आदत मिटानी है, पुरानी आदत है। रात दिन देही अभिमानी बनो, ओम शांति। शांति धाम है विश्रामपुरी। शांति धाम के कितने नाम है, परंतु विश्रामपुरी है। यहां थक गए पाठ बजाते बजाते, इस दुनिया से सब थके हुए हैं, चाहते हैं कि हम अपने सुख धाम में जाएं। ये दुनिया अच्छी नहीं लगती, स्वर्ग को देखते हैं तो स्वर्ग को देखने का, स्वर्ग के सुखों की स्मृति का, स्वर्ग के लायक बनाने वाले को याद करेंगे तो कॉन्ट्रास्ट दिखाई पड़ेगा। कोई चीज लेने जाओ, पुरानी चीज, खोटी चीज दुकान पर पड़ी है और वह उसी के साथ नई भी फर्स्ट क्लास भी पड़ी है, तो कौन सी चूज करेंगे? नवी ढूंढेंगे ना, नवी लेके जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, अगर स्वर्ग को ही देखते रहो, उसके सुखों को ही याद करते रहो, सुखदाता स्वर्ग के रचने वाले को ही याद करो और अपना कर्तव्य याद करो कि वो हमको रचना है बाबा के साथ, तो कर्म से आदत मिटेगी। कर्म करते करते, देह भान में कर्म करते करते आदत बन गई देह अभिमान की, तो आत्मिक स्थिति की स्मृति से कराने वाला कौन है, कर्म का फल क्या है, श्रेष्ठ कर्म से न केवल भविष्य की प्राप्ति होती है, संगम पर दुआएं मिलती हैं, इंस्टेंट खुशी मिलती है, अपने अंदर स्वमान जागृत होता है, तो फायदे को सामने रख करके, प्राप्ति को सामने रख करके पुरानी चीज को छोड़ो। इसलिए बाबा कहते हैं, स्वर्ग को ही देखते रहो तो नरक से दिल क्यों रखेंगे, लगी नरक से दिल हट जाएगी। बच्चे कहते हैं, बाबा जल्दी करो, इस दुख धाम से ले चलो। बाप भी समझाते हैं, ये तो छिछी दुनिया है, इनका नाम है डेविल वर्ल्ड, असली दुनिया, राक्षसी दुनिया, दुखदाई दुनिया। डेविल और डेयटी में तो अंतर है ना, दानव, मानव और देवता, तीनों में अंतर है। पुरानी आदतें से दानव बन जाते हैं, फिर कुछ समझ आ जाने से, स्वमान जागने से मानव बन जाते हैं, और स्वमान से श्रेष्ठ कर्म करने से, दूसरे को सुख देने से देवता, खाली खुद नहीं हम तो सुखी हैं बस, तो जो परमात्मा से सुख मिल रहा है, समझ मिल रही है, शांति का अनुभव हो रहा है, वरदान से झोली भर रहे हैं, रत्नों का श्रृंगार बाबा कर रहे हैं, तो ये सब करने में बिजी हो जाएंगे श्रेष्ठ कर्म, तो अभी से देवता के संस्कार जागृत हो जाएंगे, क्योंकि वहां तो देना नहीं होगा, वहां किसी को सुख देने की बात ही नहीं, तो यहां से देवता बन के जाएंगे, वहां जाके देवता नहीं बनेंगे। जैसे कोई एग्जाम में डिग्री लेके फिर दूसरी डिग्री में जाते, तो इसीलिए यहां से ही वो संस्कार बना के जाए। तो कहां डियटी वर्ल्ड और कहां डेवल वर्ल्ड, कॉन्ट्रास्ट करते रहो। डेवल वर्ल्ड नरक है, ये कोई अच्छा अक्षर है क्या? डेवल वर्ल्ड या नरक कोई अच्छा शब्द, अच्छा टाइटल है, अच्छा अक्षर है क्या? कहां डियटी वर्ल्ड, कहां डेवल वर्ल्ड। अब इस डेवल वर्ल्ड से सब तंग हो गए हैं, परंतु वापिस कहां डीटी वर्ल्ड, कहां डेवल वर्ल्ड, फिर से कॉन्ट्रास्ट करो। तंग हुए तो प्राप्ति क्या करनी है वो सामने रखो। अब तंग हो गए हैं पर वापस नहीं जा सकते, तो कारण क्या है? सत्व प्रधान दुनिया में जाना है, देवताई दुनिया में जाना है, शांति धाम में जाना है, तो तमाम प्रधानता की जो खाद पड़ी हुई है आत्मा में, वह खाद आत्मा से निकल जावे तभी वापस जा सकते। खोट निकल जावे, आत्मा सच्चा सोना बन जाए, तमो प्रधानता की खाद पड़ी हुई है, ये खाद आत्मा से निकले उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनकी अवस्था पिछाड़ी में अच्छी हो जाएगी, पुरुषार्थ करते रहे तो प्रलब्ध अथवा स्टेज सत्व प्रधान बन जाएगी, ये पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी, हमारी अपनी पुरानी दुनिया भी खलास होगी। बाकी थोड़े रोज हैं, जब तक बाप आकर वापस न ले जाए तब तक कोई वापस जा नहीं सकते। दुनिया में दुख है ना, इस दुनिया में घर में भी कोई ना कोई दुख रहता है। तुम बच्चों के दिल में है, बाबा हमें दुखों से छुड़ाने आए हैं। बाबा को याद करना है, याद से ही तत्व प्रधान बनेंगे, याद से ही दुखों से छूटेंगे। याद पक्की किन को रहेगी? याद निरंतर रहे, बाप भी याद रहे, प्राप्ति भी याद रहे, श्रेष्ठ कर्म भी याद रहे, स्वधर्म भी याद रहे, उसका आधार क्या है? अच्छे निश्चय बुद्धि बाप की याद कभी भूलते ही नहीं है, याद करने की बात भी नहीं। निश्चय अच्छे निश्चय बुद्धि है तो वो बाप की याद को कभी भूलते ही नहीं है। खुद दुखों दुखी होने की तो बात ही नहीं, वो याद का आनंद लेते हैं, वो याद की मस्ती चढ़ती है अंदर, बाबा की महिमा के गीत गाते रहते हैं। तो वो दुख हरता सुख करता बन जाते हैं। वहां जाकर के ये टाइटल नहीं है, ये टाइटल यहां का है। निश्चय बुद्धि पुराने से वैराग और कर्म पर विजय। तो वो दुख हरता सुख करता बन जाते हैं। सर्व के उनको कहा जाता है सर्व को का दुख हरता। बच्चे ही पहचानते हैं, अगर सब पहचान ले गए बाप को दुखरता सुखरता कहा जाता है। और हमको निश्चय है कि वो बाप हमारा आया हुआ है। अगर सब पहचान ले फिर सब इतने मनुष्य आकर के कहां बैठेंगे, तो ये हो नहीं सकता। इसलिए ड्रामा में युक्ति भी ऐसी रची हुई है, जो श्रीमत पर चलते हैं वही ऊंच पद पा सकते हैं। वह तो ठीक है, घर तो सबको जाना है, पर सजाएं खा करके भी शांति धाम अथवा पवन दुनिया में जाएंगे। जाने का समय है तो जाना तो सबको है, तो क्यों नहीं स्वमान से जाएं। परंतु ऊंच पद पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़े ना। याद भी रहे, सुखदाता भी बने, श्रेष्ठ कर्म भी करे, तो दूसरा पावन बनना। पावन बनने बगैर पावन दुनिया में नहीं जा सकते। तो अपनी स्मृति संस्कार सुखदाता के बनाने वाले और लक्ष्य मेरा ओरिजिनल स्वधर्म पवित्रता है। तो पवित्र बनने बगैर पावन दुनिया में नहीं जा सकते। ये जो कहते हैं कि फलाना ज्योति ज्योत समाया, या तो कहेंगे स्वर्गवासी हुआ, तो नरक है, स्वर्ग बना ही नहीं तो स्वर्ग में जाएंगे कहां। दूसरे सन्यासियों के लिए कहते हैं मोक्ष को पा लिया, वापस चला गया, समा गया ज्योति में। बाबा ने कहा ये हो ही नहीं सकता। जो उतरी आत्माएं वो ड्रामा के चक्कर पूरा होने के बाद ही जाएंगे। जो कहते हैं फलाना ज्योति ज्योत समाया वापस आया, ये हो नहीं सकता। जो पहले पहले सृष्टि पर आए हैं श्री लक्ष्मी नारायण सतयुग वाली आत्माएं, वो भी वापस नहीं जा सकती, तो और कैसे जा सकते हैं। क्योंकि तमो प्रधान आत्माएं भले बेहद का वैराग भी आए, परंतु सत्व प्रधान पवित्रता चाहिए। और दूसरा वापस समा नहीं सकती परमात्मा में, क्यों, आत्मा अविनाशी है। ड्रामा में सबको इकट्ठा ही जाना है। तुम बाबा कहते हैं जिन्होंने शुरू से आए हैं वो भी वापस नहीं जा सकते, इनके भी अब 84 जन्म पूरे हुए हैं, तो वापस जाने के लिए जन्म पूरे हुए और क्या चीज चाहिए, संपूर्ण पवित्रता चाहिए। बाकी सब आत्माओं का भी तो लास्ट बर्थ है, संपूर्ण पवित्रता चाहिए तो अब जाने के लिए तपस्या चाहिए, इसलिए राजयोग तपस्या से भी पावन बनेंगे। सब पुकारते हैं एक बाप को, ओ गॉड फादर, ओ लिबरेटर, वो गॉड है फादर, दुख करता सुख करता, श्री कृष्ण आदि को गॉड फादर थोड़े क्या कह के पुकारेंगे, श्री कृष्ण को गॉड फादर नहीं कहेंगे, गॉड फादर को वह धर्म वाले पुकारते हैं, क्रिश्चियन हो या मुसलमान हो वो गॉड फादर कह के पुकारते हैं। तो यह आत्मा की आवाज है, दुख से छुड़ाओ, आत्माएं पुकारती हैं अपने फादर को। फादर तब कहते हैं जब समझते हैं हम आत्मा है, आत्मा की भी आत्मा भी तो कोई चीज है ना, आत्मा कोई बड़ी चीज नहीं है, वो तो स्टार है और अति सूक्ष्म है। जैसे बाबा है अति सूक्ष्म, वैसे आत्मा का स्वरूप भी सूक्ष्म है, वो तो एक स्टार है और अति सूक्ष्म है, स्वरूप दोनों का एक जैसा है। बाबा है वैसे आत्मा का स्वरूप है, तो अब तुम बाप की महिमा करते हो तो स्वरूप एक जैसा है, गुणों में अंतर है। सत्व प्रधान बनाने वाला, सत्य सिखाने वाला, सत्य बनाने वाला, सत्य धाम में ले जाने वाला, ये अंतर है। वो सत्य चित्त है, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। तो तपस्या किस लिए कर रहे हैं, योग किस लिए लगा रहे हैं, क्या आत्मा उनके समान बने, बाप समान जो कहते हैं, तो बाप समान बनने का मतलब आत्मा में वही गुण भर जाएं, तुम्हारी बुद्धि में अब सारे सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान आ गया है, और कोई मनुष्य मात्र में ये ज्ञान नहीं है। सारा भारत, सारी विलायत ढूंढ लो, विदेश ढूंढो या देश में ढूंढो, ये ज्ञान किसके पास नहीं है, और विशेष करके किस बात का ज्ञान। चलो ये तो ज्ञान है कि हम आत्मा है, तो किस चीज में का ज्ञान नहीं है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। 84 जन्मों का आत्मा पार्ट बजाती है ये कोई नहीं जानता, 84 लाख जन्म क्या देते हैं वो तो इम्पॉसिबल है, 84 लाख जन्मों का वर्णन, वैरायटी का वर्णन तो कर भी नहीं सकते। तो बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को भी नहीं जानते, तो हम सुनाते हैं तुमने कितने जन्म किस युग में लिए, वो सब सुनते यदि पत्थर बुद्धि समझते नहीं। 84 जन्मों को 84 लाख कह देते हैं। 84 लाख जन्म हो तो उसकी सारा कहानी कोई सुना भी नहीं सके। अब भी तुम जानते हो हमने 84 जन्म लिए देवता धर्म वाली आत्माओं ने, हम ब्राह्मण हैं, हमने 84 जन्म लिए है, ब्रह्मा ने भी 84 जन्म लिए है, विष्णु ने भी 84 जन्म लिए है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये समझने की बात है। लक्ष्मी नारायणी 84 जन्म ले फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं, तो वही इनके से लिए फिर लक्ष्मी नारायण के भी 84 जन्म कहेंगे, कृष्ण के भी 84 जन्म कहेंगे, ब्रह्मा के भी 84 जन्म कहेंगे, तो पूरे 5000 साल के चक्कर में आते हैं। ये 5000 वर्ष का चक्कर है, उसको बाबा ने दूसरे शब्दों में कैसे समझाया, तुम 84 जन्म में वर्ण कैसे चेंज होता है, वंश कैसे चेंज होता है, तो वर्णों का राज भी तुमको अब बाबा ने समझाया है। सारे वर्णों के राज का एक शब्द है हम, सो हम सो देवता थे, तो जो देवता है वही क्षत्रिय बनेंगे, वही फिर वैश्य, वही शूद्र, फिर हम ब्राह्मण सो देवता, 84 जन्म लेने वाले, तो हमको सदा लक्ष्य रहे हम सो हम का मंत्र याद करना है। हम आत्मा सो देवता बनते हैं, फिर हम सो क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र बनते हैं, उसमें फिर कितने कितने जन्म लेते हैं, ये ब्राह्मणों के लिए है। ब्राह्मणों का ये एक जन्म है, यही तुम्हारा हीरे जैसा जन्म है। 84 जन्मों में से ये जन्म फिर देवता ही जन्म से भी श्रेष्ठ है, ये जन्म हीरे जैसा है। बाप कहते हैं ये तुम्हारा जन्म, तुम्हारा उत्तम शरीर है, इस जन्म में बलिहारी इस शरीर की भी है, जन्म है तो शरीर है ना, इसी जन्म में तुम स्वर्ग का वर्षा पा सकते हो। ब्राह्मण जन्म में स्वर्ग का वर्षा पा सकते हो, इसीलिए अब और कोई तरफ भटको मत, और तरफ भटको मत, ज्ञानमृत पियो। समझ भी आता है बराबर 84 जन्म लेते हैं, तो पहले हम ही सतो प्रधान थे, फिर सतो बने, चांदी की खाद पड़ गई, यानी आत्मा सोना है तो उसमें खोट नहीं है, ना प्रकृति के तत्व का प्रभाव पड़ता है। फिर सिल्वर है तो वायुमंडल का असर पड़ता है, हवा का, तो काली हो जाती है चांदी, हवा के कारण काली होती, इसलिए भोग के बर्तन को बहुत अच्छी तरह से साफ करके कपड़े से पोंछ के प्लास्टिक में डाल के रखेंगे तो भोग के बर्तन चमकते रहेंगे, किसी किसी के भोग के बर्तन या गिलास ऐसा काला दिखाई पड़ता है। तो ये अपनी स्टेज को भी अभी सिल्वर से सत्व प्रधान बनाना है, तो रोज बुद्धि का गिलास धुलाई करके भोग बाबा का, बाबा को भोग लगा के इसको फिर ईश्वरीय याद से कवर कर लेना है, तो टाइम काला नहीं होगा, बच के रहेंगे। तो बाबा कहते चांदी की खाद पड़ती है एकदम, बाबा पूरा हिसाब किताब बताते हैं। अब गवर्नमेंट भी कहती है सोने में खाद मिलाओ, अलॉय मिलाओ, ये तो 24 कैरेट का गोल्ड नहीं पहनो, 14 कैरेट का पहनो। प्राइम मिनिस्टर ने कहा जिस समय, ये लास्ट 2 मंथ पहले की बात है, जब युद्ध चल रहा था, अभी सोना खरीदना ही बंद कर दो, और खोटा सोना है, सोना भी खोटा हो गया है, तो खोटे चीज को भी क्यों खरीदते हो। तो बाबा कहते हैं सोने में खाद डालना वास्तव में ये तो अपमान की बात है, सत्व प्रधान आत्मा को तमो प्रधान बनाना, ये याद रहे कि ये मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है कि मैं खाद मिलाता जाऊं अपने देवान की खाद। इसीलिए भारतवासी सोने में खोट मिलाना, खाद डालना अपशगुन समझते हैं, शादी कराते हैं तो एकदम सच्चे सोने का पहनते हैं। अभी तो सच्चा सोना रहा ही नहीं है, गहने बने हुए बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा गहने तो 14 कैरेट का ही पहनते हैं। सोने पर भारतवासियों का बहुत प्यार है, क्या कारण है? खोट मिलाना नहीं चाहते। कौन सा संस्कार है ये जो खोट मिलना अपशगुन है? शादी पर थोड़ा ही दो पर सच्चा सोना दो, क्या 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 कारण है? भारतवासी अच्छी तरह से हर घर में सोने की कुछ चीजों की, दिवाली पर भी सोने की कोई चीज लेकर के आएंगे, ये कौन सा संस्कार है? अरे भारत की तो बात मत पूछो, भारतवासियों का सोने से क्यों प्यार है? सोने के महल थे ना, सोने की ईंटें थी, उसके साथ उसकी दुनिया में रहे हुए हैं, गोल्डन एज, गोल्डन स्टेज भी थी और गोल्डन एज भी थी। सच खाना, सच पहनना, सच रहना, वहां तो सोने की ईंटों की ढेर लगे रहते हैं, बिल्डिंग मटेरियल है, वहां सोने चांदी की ढेर ही रहती है, माया मच्छंदर का खेल है ना, कि वो कोई ट्रांस में गया, स्वर्ग का नजारा दिखाई पिया, महल दिखाई पड़े, ईंटें दिखाई पड़ी, तो समझा थोड़ी से पॉकेट में भर के ले जाता, नीचे आया तो पॉकेट खाली, एक स्वप्न देखा, स्वप्न में कोई चीज देखते हो उठते हो तो साथ में नहीं होती। तो बाबा कहते हैं परंतु तुम ये यादगार है कि सोने से तुम्हारा प्यार है भारतवासियों का, तो वो जो संस्कार है ना सतयुग का, गोल्डन एज, गोल्डन स्टेज, गोल्डन मैटर, प्रकृति भी सत्व प्रधान, वस्तु भी सत्व प्रधान, आत्मा भी सत्व प्रधान, शरीर भी सत्व प्रधान, ये कुछ एक एग्जाम्पल है। ये इस बात ये जचती है मुक्ति या मतलब निशानी इसलिए है सोने से प्यार है। बच्चियां समझती हैं अभी हम फिर से स्वर्ग में जाते हैं, फिर अगर पति तंग करते हैं तो बेचारी अंदर रोकती हैं कब हम सुखधाम में जाएंगे, बाबा आप जल्दी करो। बाप कहते बच्चे जल्दी कैसे करूं, तैयारी तो तुमको करनी है, जल्दी करो जल्दी विनाश हो गए, पहले तुम अपना किचरा तो निकालो। परम धाम भी स्वच्छ दुनिया है, सतयुग भी सुंदर सत्व प्रधान दुनिया है, तो किचरा तो पहले निकालो, पुरानी आदत तो मिटाओ, योग की यात्रा पर रहो। हाँ बाबा धीरज देते हैं, पतित पवन को बुलाते हो पुकारते हो, पतित पवन आए, गाते भी हैं सर्व का सदगति दाता एक, तो यहां की बात है। यानी परमात्मा आकर के सुख देता है, वो भी संगम की भारत की बात है, और अकासुर बकासुर ये भी इस समय की बात है, क्योंकि आसुरी मनुष्य बन गए। तो बाप समझाते हैं मैं कल्प के संगम पर आता हूँ, जब सारा झाड़ी जड़जड़ी भूत अवस्था को पा लेता है, खोखला हो जाता है। तुम जानते हो सतयुग में हर चीज सत्व प्रधान होती है, वहां इतने पक्षी जानवर आदि हैं, यहां जितने हैं वैरायटी वहां इतने नहीं होते, जो होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, सुखदायी होते हैं। बड़े आदमियों के पास अच्छी सफाई रहती है, उनके रहने का स्थान फर्नीचर आदि बहुत अच्छा होता है। तो तुम भी इतने ऊंचे देवता बनते हो, वहां कोई गंदी चीज रह नहीं सकती, छीछी चीज, वहां तो मच्छर अनेक प्रकार की बीमारियां, कितनी गंदगी है। गांव में तो शहरों में तो बहुत गंदगी है, गांव में इतनी नहीं, शहरों में बहुत मनुष्य रहते हैं तो बहुत गंदगी है, रहने की जगह भी नहीं है। तुम तो सारे विश्व के मालिक बनते हो। तो बाप कहते हैं गाते तो हैं कि इस सृष्टि में ही घट में ब्रह्मा, घट में विष्णु, घट में नौ लख तारे, यानी ब्रह्मा से विष्णु बन जाते हैं, तो विष्णु के साथ ये सितारे भी है। सतयुगी दुनिया में तुम चैतन्य सितारे भी हो, सतयुग में ये देवता बनते हैं, इतने थोड़े होते हैं। झाड़ पहले छोटा होता है फिर वृद्धि को पाता है, तो पॉपुलेशन बहुत थोड़ी होगी। मीठी नदियों के ऊपर रहते होंगे, यहाँ नदियों से बहुत कनाल निकालते हैं, वहां कैनाल्स लगा निकालने की जरूरत नहीं है, मुट्ठी जितने तो मनुष्य होते हैं, थोड़े ही मनुष्य हैं, इतने के लिए गंगा जमुना तो है ही, उन नदियों के आसपास ही रहते हैं। सतयुग में तुम तो नदियों के किनारे रहते हो, नदियां कभी उसमें बाढ़ नहीं आती, उछल नहीं खाती, प्रकृति भी डिसिप्लिन में रहती है, इसलिए नाम है स्वर्ग। अब कहते स्वर्ग क्या ही लाखों वर्ष है, अच्छा भला वहां कौन राज करते थे ये तो बताओ, कितने गपोड़े लगाते हैं। तुम जानते हो हम कल्प पहले माफिक ये पाठ बजा रहे हैं, फिर से देवता बन रहे हैं, सुखदाई सुख लेके सुख दे रहे हैं, और ये रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के असुरों के विघ्न पड़ेंगे। फिर मनुष्य समझते हैं असुर लोग ऊपर से गंध गोबर आदर डालती थे, ये रामायण में भी विघ्न पड़े। कथा है ना, विश्वामित्र ने यज्ञ रचा, असुर ने गंदगी डाली यज्ञ में, ये इस समय की बात है। तुम देखते हो कितने विघ्न पड़ते हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, तब तो पाप का घड़ा भरेगा। पावन बनना है तो पाप का घड़ा भी भर रहे, तो पाप के कारण फिर जो पवित्र बनते हैं उनको सहन करना पड़ेगा। तो तुमको अपने बाप और वर्षे को याद करते रहो, मार खाने समय में बुद्धि में शिव बाबा को याद करो। तुमको तो बुद्धि में ज्ञान है, किसको फांसी पर चढ़ाते हैं तो पादरी लोग कहते हैं गॉड फादर को याद करो, ऐसे नहीं कहते क्राइस्ट का याद करो, इशारा गॉड के लिए करते हैं। वो इतना लवली है ना, बाबा बहुत प्यारा है, इसलिए उनको याद पुकारते हैं। आत्मा पुकारती है, अभी मेहनत है किस बात में, इस एक जन्म में तेसर जन्म तो देहाभिमान में रहे, अभी इस एक जन्म में आधा कल्प की आदत मिटानी है। ये पुरानी आदत जो पड़ी हुई है ना, इसको मिटाना है। देहाभिमान में रहे हो तुम, जानते हो देहाभिमानी बनने से आत्माभिमानी बनने से स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे तो कितनी ऊंची प्राप्ति है, यानी अचीवमेंट को सामने रखो। तो रात दिन कोशिश में रहना पड़े ना, मनुष्य धंधे आदि के लिए मेहनत करते हैं, आमदनी में मनुष्य को कभी झुटका या उबासी नहीं आएगी, कमाई हो रही है ना, तो पुरानी आदतें क्यों छोड़नी है, अच्छी चीज प्राप्त हो रही है। पैसे की खुशी रहती है, थकने की बात नहीं रहती। ये बाबा अनुभवी है, ब्रह्मा बाबा जब स्टीमर आते थे कलकत्ता, समझो जैसे कि एयरपोर्ट पर दुकानें होती हैं, ऐसे स्टीमर जहां रुकते थे वहां शॉपिंग सेंटर था। तो रात को स्टीमर्स आते थे तो जो आने वाले माल खरीद करते थे, जब तक ग्राहक की जेब खाली ना करे तब तक उनको छोड़े नहीं। अभी आए हैं तो पैसा तो पॉकेट में है, इसीलिए माल खरीद लेते हैं। बाबा ने रथ भी पूरा अनुभव ही लिया है, इसने सब अनुभव किया है। गांव का छोरा भी था, 10 आने मण अनाज बेचता था। ये तो आपने कहानी सुनी होगी कि बाबा का जो अंकल था काका मूलचंद, वो बहुत दानी था, दांत उनको हाथी दांत का बिजनेस था, पर दानी बहुत थे। तो बिजनेस के साथ साथ एक स्थान एक कमरा फ्री दान देने का था, जिसमें किसको कपड़ा चाहिए, रोटी चाहिए, स्कूल की चीजें चाहिए, कोई गरीब नहीं खरीद सकता है, तो उनको वो खुला रहता था शॉप, शॉप नहीं मतलब मकान कमरा, ब्रह्मा बाबा उस पर बैठते थे, शौक था मैं दूं। तो बाबा को 11 साल की उम्र में ये ख्याल आया कि ये तो मैं अपने चाचा की कमाई दान कर रहा हूं, चाचा को पुण्य मिलेगा, मैं अपनी कमाई करूं ना, अपनी कमाई से पुण्य करूं। तो घर से अनाज लेके टोकरी में, कभी गेहूं, कभी बाजरा, कभी ज्वार, कभी चना, जो घर में चीजें थी स्टॉक में, वो लेकर के गांव में बेचने जाते थे। तब उस वही है कि गांव का छोरा टोपी फटी हुई, नंगे पैर टोकरी उठा करके बेचने जाते थे, फिर वो पैसा इकट्ठा होके दान करते, व्यापार करते करते अनाज बेचते बेचते हीरों का व्यापारी बन गए। तो बाबा दसाने मन अनाज बेचता था उस समय, इसने सब अनुभव किया। और अभी तो देखो विश्व का मालिक बनते हैं, एकदम गांवड़े का गांव का छोरा था, लड़का था, फिर चढ़ गया तो एकदम जवाहरात में लग गया, अनुभव हो गया ना, बस जवाहरात की बात। फिर अभी रियलाइज हुआ सच्चे जवाहरों का धंधा करने, सच्चे हीरे जवाहरात का धंधा करना, ये जवाहरात के धंधे में लग गया। तो अभी ये व्यापार भी जो हीरों का है वो रॉयल व्यापार है। बाबा बहुत अनुभवी है, बाबा वाइस राजाजी के घर में जाते थे जैसे अपना घर, इतना नजदीक था जैसे कि कॉन्टेक्ट इतने अच्छे थे। इनको कहा जाता है अविनाशी ज्ञान रत्न, जितना ये बुद्धि में धारण करेंगे इससे ही तुम पद्मपति बनेंगे। शिव बाबा को कहा जाता है सौदागर रत्नागर, उनकी महिमा भी गाते हैं, फिर क्या देता सर्वव्यापी। तो महिमा भी गाते हैं, ग्लानी भी करते हैं, कैसी हालत हो गई है भक्ति मार्ग की। तो बाप कहते हैं जब भक्ति पूरी होती है तो भक्तों का रक्षक बाप आते हैं। बहुत भक्ति करते हैं, कौन करते हैं सबसे जास्ती भक्ति कौन करते हैं? वो जो देवता थे वही शुरू से भक्ति करते हैं। ये तो सिद्ध होता कि तुम भक्ति करते हो, वही यहां आकर पहले ब्राह्मण बनते हैं और बाप से वर्षा ले लेते हैं पूज्य बनने का। रावण ने पुजारी बनाया, बाप पूज्य बनाते हैं, ये भगवानों वाच है। तो मैं तुमको पूजनीय मूर्त बनाता हूं, भगवान एक है, दो तीन भगवान नहीं होते, गॉड इज वन। तो गीता भी भगवान की गाई हुई है पर नाम बदली कर दिया, श्री कृष्ण भगवान वाच, कितना फर्क हो गया। ड्रामानुसार फिर गीता का नाम ऐसे बदलना ही है। फिर बुलाते हैं पतित पावन आओ, तो बाप पावन बनाते, रावण पतित बनाते हैं। ये समझने की बातें हैं, इसलिए बुद्धि भी चाहिए समझने की। श्री मत श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत एक बाप की है। श्री लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बाप की मत से ही बने हैं, इसीलिए बुद्धि को श्रेष्ठ बनाए, बाबा की मत पर चले। अच्छा अच्छा, इतना सब समझा के मीठे 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 सिक्की लद्दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। इस एक जन्म में 63 जन्मों के पुराने देह अभिमान की आदत मिटाने की मेहनत करनी है, और कोई मेहनत नहीं है, और वो भी रियलाइजेशन से आदत पड़ती है। देह अभिमानी बन स्वर्ग का मालिक बनना है। सेकंड पॉइंट, इस हीरे तुल्य उत्तम जन्म में इस बुद्धि को भटकाना नहीं है। जीवन हीरे तुल्य है, अभी समय को सफल करना है, बुद्धि को भटकाना नहीं है। सतो प्रधान बनना है, अत्याचारों को सहन करके पाप से पूरा वर्षा लेना है। वरदान साकार बाप समान, अपने हर कर्म को यादगार बनाने वाले आधार मूरत और उद्धार मूरत भव, गति सदगति करने वाले उद्धार मूरत भव। जैसे साकार बाप ने अपना हर कर्म यादगार बनाया, ऐसे आप सभी का हर कर्म यादगार तब बनेगा जब स्वयं को आधार मूरत और उद्धार मूरत समझ करके चलेंगे। हम दूसरों के सामने एग्जाम्पल हैं, उनको सपोर्ट देने वाले हैं, कल्याणकारी हैं। जो अपने को विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त समझते हैं, उनकी निशानी क्या है? उनके कर्म ऊंचे होंगे, श्रेष्ठ होंगे, उनकी वृत्ति और दृष्टि में सर्व के कल्याण की भावना रहती है। तो वृत्ति दृष्टि और भावना, उसके आधार से कर्म श्रेष्ठ हो जाता है। ऐसे श्रेष्ठ कर्म के यादगार बनती है, श्रेष्ठ कर्म की यादगार है। स्लोगन, सत्यता की शक्ति को धारण करने के लिए, सत्यता की शक्ति को धारण करने के लिए सहनशील बनो। अव्यक्त इशारा, सदा आश्रित रहने के लिए नेचर को सरल और सहनशील। इस सहज योगी जीवन में अगर मुश्किलातों का अनुभव होता है तो सहज राज कैसे करेंगे? मुश्किल को मुश्किल नहीं समझो, सहज योगी बनेंगे तो वहां सहज राज करेंगे। सहज योगी जीवन में अगर मुश्किलातों का अनुभव होता है तो सहज राज कैसे करेंगे? यहां के संस्कार वहां ले जाएंगे। देखो, आपके यादगार जो देवताओं के चित्र बनाते हैं, उनकी सूरत में सरलता जरूर दिखाते हैं। तो जो जितना सहज पुरुषार्थी, इजी नेचर वाला और श्रेष्ठ कर्म वाला, रंग मनसा में भी सरल होगा, वाचा में भी सरल होगा और कर्म में भी सरल होगा। मनसा में भी सरल, वाचा में भी सरल, कर्म में भी सरल, उसी को कहते हैं फरिश्ता। ओम शांति, ओम शांति।